Oh मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु शक्ति मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु शक्ति मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु शक्ति मंगलम
भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान कपिल ने जो देवहूति को उपदेश किया वो कपिलोपाख्यान आप लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग मजरम पाशम आत्मन कवियो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष धर्म पावतम। संसार के पदार्थों में जो आसक्ति बांधने वाली शास्त्रों में कही गई कपिल कहते हैं वही आसक्ति मन का वही प्रेम अगर संत के साथ हो तो मोक्ष के बंद दरवाजे को खोल देता है। हमारे सनातन संस्कृति के जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें इस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया है सत्संग को। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै दुर्लभं त्रयमेवै तद्देवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशय। ऐसे अनेकों उदाहरण है जहां व्यक्ति को यह कहा गया, संबोधित किया गया कि तुम संतों का साथ करो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक संत को मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा कि गोस्वामी जी ने तीन बातें कही तुलसीदास जी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। तो कहा जिसने इस शरीर को प्राप्त कर लिया, पा लिया, क्या वो पूर्णता को उपलब्ध हो गया, उसे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं? तो कहा नहीं, जीवों में सबसे बड़े भाग्यशाली जीव वो हैं जिनको ये मनुष्य शरीर मिल गया। वहां जीव की बड़े भाग्य की बात की, बड़े भाग्य माने किसके? तो कहा जीवों के। जीव तो अनेकों प्रकार के हैं, अनेकों, प्रत्येक योनि में जीव है। तो बहुत सारी योनियों में जिनको मनुष्य शरीर मिल गया, वो समझो बहुत भाग्यशाली जीव है। दूसरी बात कही कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भाग्यशाली कौन है? तो कहा मनुष्यों में वे बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने संतों का साथ प्राप्त किया। तो कहा सत्संग में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होती है, क्या सबका भला हो गया, सबका उद्धार हो गया, सबका कल्याण हो गया? तो कहा नहीं, वहां पर भी थोड़ा सा फर्क करना चाहिए। बड़े भाग्य पाई सत्संगा बात सही है, आए बहुत लोग, लेकिन लाभान्वित कौन हुए, वास्तव में भाग्य की पूर्णता को कौन उपलब्ध हुए? तो कहा बड़े भाग आई उर जैसे, जिसके हृदय में संतों की बातें उतर गईं, जीवन में जिन्होंने उन बातों को ले लिया, सबसे बड़े भाग्यशाली बहुत है। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि यहाँ कपिल भगवान ने संतों के साथ करने के लिए प्रेरित किया है उन साधकों को जो वास्तव में चाहते हैं कि यहाँ संसार की दुख माया से छूट करके उस परमानंद को उपलब्ध हो सके, उस आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सके जहाँ सुख और दुख दोनों ही सम हो जाते हैं, दोनों से ही ऊपर साधक उठ जाता है। अगर हम उस स्थिति को पाना चाहते हैं, उपलब्ध होना चाहते हैं जहाँ देवहूति गई, तो भगवान कहते हैं कि सीधी सीधी बात भी अगर हमारी समझ में न आती हो तो संतों का साथ करना चाहिए। देखो कहने को तो उन्होंने सब कुछ कह दिया, पहले ही उद्बोधन दे दिया कि योग आध्यात्म का पुंसा मतो निशेषाय में, ये पक्की बात है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा आप उस चीज को उपलब्ध हो सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। कैसे? उसका भी उपाय बताया कि मन है, अगर संसार का चिंतन करेगा तो बांधने वाला होगा, यही मन अगर परमात्मा का चिंतन करने लगे तो मुक्ति देने वाला होगा। उपदेश स्पष्ट है, उपदेशों में कहीं भ्रम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमको समझ में नहीं आता है, फिर भी अगर हमारे पल्ले नहीं पड़ती है बात, फिर भी अगर हमारा मन साधन करते समय एकाग्रचित्त नहीं होता है, अथवा हमारी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कई लोग कहते भी कि इतने सारे साधन हैं, इतने सारे प्रवचन हैं, इतने सारे उपदेश हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं अभी किसी के यहाँ था तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा क्या? कहा इतने संतों को सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, सही कौन सा है ये समझ में नहीं आता। हमने कहा सही सब है, गलत एक भी नहीं। ये तो धारणा ही मत बनाना कि कोई गलत है, ये तो दिमाग में आने ही मत देना कि कोई गलत हो भी सकता है। अब उन सब में से तुमको कौन सा सही लगता है वो चुन लो, स्वतंत्रता हमारे यहाँ है, पूरा पूरी निश्चिंतता है, स्वतंत्रता है कि आप जो चाहो कर सकते हो, रास्ता चुनो। लेकिन ये ख्याल कभी मत पालना कि जो रास्ता हमने चुना नहीं है वो खराब है, जो रास्ता हमने चुना नहीं है वो बेकार है, गलत है, क्योंकि सभी रास्ते वहीं पहुंचाते हैं। और ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशालतम बात है और महत्व वाली बात है कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते होने के बाद भी सब वहीं लेकर के पहुंच जाएंगे आपको, ये पक्की बात। तो चाहे आप परमात्मा का नाम स्मरण करके पहुंचो, चाहे आप कीर्तन करके पहुंचो, चाहे आप ध्यान करके पहुंचो, चाहे आप ज्ञान करके पहुंचो, मूलतः पहुंचाने का उद्देश्य महात्माओं ने वहीं रखा है कि आपको वहीं परमात्मा के पास में पहुंचना है, उसी अवस्था को। समय रास्ते के अनुसार लग सकता है, हमारी जितनी योग्यताएं होती हैं, हमारी जितनी पात्रता है, उसके अनुसार उसमें हमको समय लग सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि गलत है। तो और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कहा कि ठीक है संतों का साथ करो। ये संत जैसे अगर हमें समझ में नहीं आए कि हमारे सिरदर्द हमारा सिरदर्द कैसे खत्म हो, कौन सी दवा लेने से हो, दवाइयां तो बहुत है, कई प्रकार की दवाइयां आप प्रचार देखते हैं टेलीविजन में, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी दवाई लेना चाहिए या कौन सी हानिकारक हो सकती है, तो मुझे लगता है कि सभी दवाइयां सिरदर्द को खत्म करने के लिए ही है, कोई अच्छी और कोई खराब नहीं, ऐसा नहीं कि दूसरी खराब है दूसरी गलत है, उद्देश्य उनका वही है कि आपका सिरदर्द ठीक हो, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लोग यही कहेंगे कि डॉक्टर से सलाह लो, उसके हवाले कर दो अपने आप को, वो खुद ही परीक्षण करके बता देगा कि आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से साधन हमारे यहाँ बहुत है, अनेक है, लेकिन उन साधनों में अगर हम चुनाव करने में अक्षम है, हम समर्थ नहीं है, तो कहा कि आप एक काम कीजिए और आप संत के पास चले जाइए, वो खुद ही आपको देखेगा, परीक्षण करेगा, उसके बाद बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए। संत कौन होते हैं, यही हमने छोड़ी थी कल बात कि संत क्या है, किसे कहते हैं। तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। यहां एक बात और कहेंगे, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है, वहां भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने संकेत किया है कि जो लक्षण स्थित प्रज्ञ महापुरुष के हैं वे ही लक्षण वे ही गुण वे ही चीज साधक के लिए गुण हो जाते हैं। नहीं समझ में ये बात, सिद्धों के जो लक्षण है महापुरुषों के जो लक्षण है साधक के लिए वे ही गुण हो जाते हैं, यानी साधक उन चीजों को प्राप्त करने की कामना करे, साधक उन चीजों को ये अभिलाषा करे अपेक्षा करे कि ये चीजें जो सिद्धों के लक्षण है ये हमारे में आए, आदर्श बन गए वो कि ये हमें हमको प्राप्त हो जाए। मैंने एक संत से सुना कि संतों के जितने भी लक्षण कहे गए हैं ऐसा नहीं कहा गया कि संत ऐसे ऐसे होने चाहिए, इतना ध्यान रखना, विधेयात्मक नहीं है कि संत ये लक्षण होंगे तो संत होंगे, ऐसा नहीं है। तो बोले ऐसे ऐसे लक्षण हमने संतों में देखे, जो संत थे जो महापुरुष थे जो वितराग थे जिन्होंने उस तत्व को जाना उनमें हमने ये लक्षण देखे, इसलिए हमने कहा कि ये संत के लक्षण है। ऐसा मत सोच लेना कि ये लक्षण जिसमें होंगे वे संत हो ही जाएंगे, अथवा पहले ये लक्षण लिखे गए बाद में संत बने। संतों की मान्यता यह है, महापुरुषों का चिंतन यह है कि पहले संत बने, पहले उन्होंने उसको पाया, उसके बाद में फिर इन लोगों ने देखा लिखने वालों ने कि संत कैसे होने चाहिए और उनको देख करके लिखे गए। अब अगर आप संत बनना चाहते हो हम संत बनना चाहते हैं तो हमारे लिए यही गुण है यही आदर्श है, जो उन संतों में देख करके लिखा गया वे ही हम पालन करने लगे तो हम भी संत बन जाएंगे, ये बात दिमाग में रखना। तो ऐसा मत सोचना कि ऐसे ऐसे संत होने चाहिए, दिमाग में ये रखना कि इन चीजों को हम प्राप्त करके संत हो जाएं। सबसे पहले लक्षण किया तितिक्षवा, महात्मा कैसे देखे गए संत कैसे देखे गए, तो कहा कि वे तितिक्षु होते हैं। तितिक्षा का मतलब है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। संसार के जितने भी लोग हैं जितने भी प्राणी हैं वे सब कष्ट सहन करते ही, अगर कष्ट आ जाए तो आप क्या करोगे, सहन करना ही पड़ेगा। आप चाहे रो करके करो चाहे चिल्ला के करो चाहे परेशान होकर करो चाहे खुशी होकर के करो चाहे उपेक्षा भाव को लेकर के करो, लेकिन कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। यहां ये कहते हैं कि कैसा भी संकट हो कैसी भी परेशानी हो सारे दुखों को वो सहन करता है, लेकिन अप्रतिकार पूर्वकम बिना किसी विरोध के बिना किसी परेशानी के। ये बात गौर करने लायक है। हिंदी में विचार सागर एक ग्रंथ है उसमें इसका लक्षण किया है, आतप शीत क्षुधा तृषा इनको सहन स्वभाव, ठंडी गर्मी भूख प्यास इनको सहन करने का जिसका स्वभाव बन गया, स्वभाव बन गया मतलब उसे पता नहीं चलता है मालूम नहीं पड़ता है, हम ठंडी लग रही है कांप रहे हैं और दूसरा कोई कहे कि आप थोड़ा कपड़ा ओढ़ लीजिए कुछ पहन लीजिए और हम कहें नहीं जी हम तितिक्षा कर रहे हैं, तो ये तितिक्षा नहीं।
क्योंकि अगर ठंडक आपको महसूस हो रही है तो इसका मतलब तितिक्षा वाला भाव आपको प्राप्त नहीं हुआ। भूख लगी खा लो, बोले नहीं जी हमारा व्रत है कैसे खा सकते हैं। भूख तो लगी, खाने की इच्छा तो है, खाने की कामना तो है, लेकिन दबाए हैं, रोक रहे हैं, तो वो व्रत हो सकता है, वो आपका दमन हो सकता है, वो आपका शम हो सकता है, लेकिन तितिक्षा वाला लक्षण घटित नहीं होता। तितिक्षा का तो मतलब है कि स्वभाव हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे नाक का स्वभाव हो गया ठंड का सहन करना, उसे पता चलता है, नाक को मालूम ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारे बाकी शरीर को पता चलता है लेकिन नासिका को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इसका स्वभाव बन गया, ठंडी हो रही है लेकिन ठीक है होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही पूरा शरीर यानी कि पूरा चिंतन, पूरा मन जिसका ऐसा हो गया हो कि किसी भी परिस्थिति में वो पहुंच जाए और अपने आप को वो ढाल लेता है, परेशान नहीं होता, उसका नाम तितिक्षा है। ये संत का लक्षण है। मैंने सोचा कि ऐसा संभव है क्या कि आपको सर्दी हो और आप सर्दी पड़ती रहे आपको पता न चले? संभव है क्या कि गर्मी पड़ती रहे और आपको पता न चले? संभव है क्या आपको भूख लगे और पता न चले, उसका जो कष्ट है उससे आप परेशान न हो? ये संभव है? तो मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं निकला और मैंने रास्ते में, गर्मी पड़ रही थी भयंकर, मई जून का महीना रहा होगा, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती, और वहां रोड के किनारे एक लोहार, जानते हैं लोहार, लोहे की चीजें जो बनाता है, तो वो लोहे की चीजों को बनाने वाला वो व्यक्ति उन भयानक गर्मियों में आग के सामने खड़े होकर के और लोहा पीट रहा है। कदम रुक गए हमारे, और वो बड़ा मस्त है, बड़ा निश्चिंत है, वो परेशान नहीं है। जिस धूप में हम खड़े रहने के लिए कल्पना नहीं कर सकते कि खड़े रहने से ही हम मरे जा रहे हैं, गर्मी लग रही है, उस धूप में वो न सिर्फ खड़ा है आग के पास, और काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, परिश्रम भी कर रहा है, और निश्चिंत भी है, परेशान नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि उसे गर्मी लग रही है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? नहीं लग रही, नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही। ये ध्यान देना आप, बहुत विचित्र बात है लेकिन सच है कि गर्मी है। अगर वो एहसास करना चाहे तो उसे गर्मी लगेगी, ऐसी बात नहीं है। वो अनुभव करना चाहे तो उसे गर्मी, वो संत नहीं है, वो महात्मा नहीं है, लेकिन जिस समय वो लोहा पीट रहा है, मेरा मानना है कि उसे गर्मी नहीं लग रही, उसे महसूस नहीं हो रहा। क्यों? उसका कारण यह है कि वो जो चीज बना रहा है, उस चीज के बनाने के बाद वो जब उसे बेचेगा, बेचने के बाद जब उसे पैसा मिलेगा, उस पैसे में उसका चित्त है। बात समझना, पाने की अभिलाषा में वो काम करने के लिए तैयार है और मस्ती से काम कर रहा है। किसान भी काम करता है ठंडी में और पानी दे रहा है। जब हम लोग रजाई के अंदर में पड़े हुए हैं, ठिठुर रहे हैं, उसके बाद भी वो गांव में खेतों में पानी दे रहा है, खेतों में, तो क्या उसे ठंड नहीं लग रही? तो कहा लगती है, ऐसी बात नहीं, नहीं लगती। लेकिन जिस समय वो काम करने के लिए जाता है, उसके मन में एक उद्देश्य रहता है, एक लक्ष्य रहता है कि वो हमें प्राप्त करना है, हमें ये धन प्राप्त करना है, हमें ये अन्न प्राप्त करना है। बस जहां उसने लक्ष्य में अपने मन को केंद्रित किया, सारी ठंडी सारी गर्मी दूर हो गई, वो सारी थकान को भूल जाता है, सारी मेहनत के द्वारा जो उसके अंदर में परेशानियां पैदा होती हैं सबको भूल जाता है और काम करने में जुट जाता है। और मूलता क्या है? दुख क्या है? दुख मन की धारणा ही दुख है, और क्या है? मन से आप विचार करने लगते हो तो परेशान होने लगते हो। अगर शरीर में चोट लग जाती है, आपके मन को पता नहीं चलता है, तो आपको दुख नहीं होता है। तो जहां मन देखने लगता है, जहां आपको मालूम पड़ जाता है, ज्ञान हो जाता है, आप परेशान होने लगते हो। तो जहां आपने मन को अपने लक्ष्य में लगाया, सुख दुख से ऊपर हो गए, आप दुख से ऊपर हो गए, अब आपको कष्ट कष्ट महसूस नहीं होता। यहां से हमने एक चीज सीखी कि अगर साधक अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा ले, केंद्रित कर ले कि यहां तक हमें पहुंचना है, ये मुझे प्राप्त करना है, तो सारी चीजें छूट गई। फिर दुख आए, चाहे बारिश आए, चाहे गर्मी आए, चाहे ठंडी आए, कोई भी अवस्था रहे मन के प्रतिकूल, मन के प्रतिकूल। अच्छा, दुख क्या है आपको पता है? दुख किसे कहते हैं? तो कहा मन के विपरीत जो है वो दुख, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो मन के विपरीत जो भी आपको लगता है वो दुख देने वाला होता है। और लेकिन जब आपने अपने मन को ही वहां से हटा दिया, परिस्थितियों से अलग कर दिया, परिस्थितियों से दूर कर दिया, तो मन वहां अनुभव करने वाला है ही नहीं, दुख को अनुभव करने वाला, तो दुखी आप होंगे कैसे? ये तो आपने सुना ही है कि सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? मन ही करता है, और आपने मन को हटा करके लक्ष्य में केंद्रित कर दिया तो दुखी होगा कौन। इसलिए जब आपको दुख हो, आप बैठे साधना करने के लिए, आप बैठे ध्यान करने के लिए और आपके घुटनों में दर्द होने लगा, और तब आप अपने मन से कहो कि मेरे मन तुम इस दर्द से परेशान हो रहे हो, संसार का जो दर्द है, संसार का जो दुख है, माया का जो कष्ट है, उससे तुम दूर होना चाहते हो कि नहीं। अगर तुम यहीं उलझ जाओगे तो वो बड़ा झंझट, बड़ा जो संकट है, उससे तुम पार कैसे जाओगे। चलो यहां से, जहां मन को आप लक्ष्य में केंद्रित करोगे कि नहीं हमें तो बहुत बड़ी भवादा दूर करनी है, हम छोटी छोटी दुखों में उलझ जाते हैं, हम छोटी छोटी सुखों में उलझ जाते हैं। ध्यान रखना, संसार का कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी साधक छोटी छोटी बातों में उलझ करके बड़ी बातों को प्राप्त नहीं कर सकता। कहानियां हम सुनते हैं, कथाएं हम सुनते हैं, लेकिन इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आई। श्रीमद् भागवत में कथा आती है समुद्र मंथन की, तो समुद्र मंथन में भगवान ने पहले ही कह दिया कि रत्न तो बहुत निकलेंगे लेकिन उन रत्नों में उलझना मत। रत्न क्या है? सुख है। तुम जब अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें लालच बारे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उसमें अगर उलझ गए तो आप अपने लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सुख ही आपको रोकते हो, दुख भी आपको रोकेंगे। क्या समुद्र मंथन के समय पर कष्ट नहीं आए, परेशानियां नहीं आई, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अगर आप उन मुश्किलों से डर गए, भयभीत हो गए, तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये संदेश है उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उस हर आदमी के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है और लक्ष्य को पाना चाहता है, कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आए तो आने दो, तितिक्षु, हमें तितिक्षा प्राप्त करनी है। ये तितिक्षा सबके लिए है, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो। और देखो, संसार में जितने भी काम आप करते हो उनमें भी तो कष्ट सहन करना है, करना पड़ता है कि नहीं। लेकिन विचित्र बात यह है कि संसार के कष्टों को आप और हम सहन कर लेते हैं। एक सज्जन कथा में नहीं आए तो हमने उनसे कहा कि आप कथा में नहीं आते हो, तो कहने लगे स्वामी जी सिर दर्द होने लगा था कल, इसलिए नहीं आया। मैंने कहा ईमानदारी से कहना कि अगर ये सिर दर्द होता तो आप ऑफिस जाना छोड़ देते। हा? नहीं छोड़ते आप, क्योंकि वहां आपको कुछ उम्मीद है, कुछ आशा है, प्राप्त करने की अभिलाषा है। आप जानते हैं कि एक दिन नहीं जाएंगे तो हो सकता है हमारी सैलरी काट ले वो, हमारी तनख्वाह की कमी कर दे। इसलिए आप उसकी चिंता छोड़ करके सिरदर्द दवाई लेकर के जाओ, चाहे जैसे जाओ, या सिरदर्द होता रहेगा, आप काम करने के लिए जाओगे, वहां प्रयत्नशील हो जाते हो। और यहाँ आध्यात्मिक पथ पर इसका मतलब है कि हमने इसको थोड़ा कम महत्व दिया। शिक्षा का मतलब है कि आप स्वभाव बना लो, आने दो ठीक है, लेकिन अपने लक्ष्य को याद करो, हमेशा अपने मन को अपने लक्ष्य में केंद्रित रखो। इसी का नाम प्रतीक्षा है। तभी वो दुख आतप सीध क्षुदात्रता, ये सब स्वभाव बन सकते हैं जब आप अपने मन को लक्ष्य में केंद्रित रखो। आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो पहले कि आप पाना क्या चाहते हो। कारुणिका, तितिक्षु का एक शब्द और अर्थ समझ में आता है। तितिक्षा का मतलब है जो अपने संपूर्ण कष्टों को सहन कर लेता है, अपने कष्टों को। साधु को, संत को अपना बड़ा से बड़ा कष्ट छोटा मालूम पड़ता है, अपने बड़े से बड़े कष्ट को आसानी से सहन कर लेता है। लेकिन संत की एक दूसरी खूबी यह है, महात्मा का एक दूसरा सबसे बढ़िया लक्षण यह है कि कारुणिका, दूसरे के छोटे से छोटे कष्ट को वो सहन नहीं कर पाता। उसके लिए उसका हृदय द्रवित हो जाता है, उसके लिए उसका हृदय बहने लगता है, द्रवित होकर के उसको कष्ट महसूस होने लगता है। हम अपनी छोटी से छोटे दुख को बड़ा समझते हैं और दूसरों, अच्छा तुम इतनी सी बात में परेशान हो गए, अच्छा तुम इतनी सी बात में दुखी होने लगे, रोने लगे। दूसरों को हम ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं और अपने छोटे से दुख के लिए रोने लगते हैं। लेकिन यहां कपिल कहते हैं कि संत वो है कि अंदर अपने लिए तो वो कठोर है लेकिन दूसरे के लिए मुलायम है। अपने लिए प्रत्येक कठोरता का कारण बनता है, जो जो परिस्थितियां आती हैं उनको सहन करता चला जाता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे का कष्ट उसे सहन नहीं करता। हृदय से वो बड़ा कोमल है। और किसी ने लिखा है, दया जिसके हृदय में नहीं, करुणा जिसके हृदय में नहीं, उसे तो संत ही नहीं समझना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, वो तो कसाई है। अगर हम दूसरों के प्रति दया करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं या करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होता है तो काहे के संत के लक्षण, हम कैसे साधु हैं, कैसे साधक हैं। साधु का मतलब, फिर वही कहता हूं, आप सब संत हैं क्योंकि आप आध्यात्मिकता से जुड़ रहे हैं। आप सब साधु हैं, आप सब ब्राह्मण हैं। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, वहां पर ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया है सबके लिए। कौन? जो कल्याण करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ हुए हैं, वे सभी ब्रह्म को जानने की इच्छा कामना करने वाले सभी ब्राह्मण हैं, सभी महात्मा हैं, सभी संत हैं। आप सब उस संत की श्रेणी में आते हैं, और अगर उस संत बनकर के उस पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ऐसा हृदय बनाने की कोशिश करो। ये हमारे लिए गुण है, ये हमारे हृदय में आना चाहिए। अगर दूसरे का दुख देख करके आपका चित्त द्रवित नहीं होता है तो जरा बताओ आप भगवान के सामने ये कैसे कह सकते हो कि हमारे दुख को देख करके आप क्यों नहीं द्रवित होते। भगवान भी तो कहेंगे कि तुम कभी किसी के दुख को देख करके द्रवित हुए हो, दूसरे का दुख कभी तुमको दुख महसूस हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर में करुणा उत्पन्न नहीं हुई तो कौन सा ऐसा कारण है कि मैं तुम्हारे ऊपर करुणा करूं? कौन सा ऐसा कारण है कि तुम हमसे ये अपेक्षा करते हो कि तुम्हारे भवबंधन को छूटने के लिए मैं करुणा करूं, मैं कृपा करूं? ये दूसरा लक्षण। और तीसरा, सुहृदा सर्वदेना, सभी का कल्याण चाहता है। कई लोग सिर्फ अपने कल्याण की कामना करते हैं, कई लोग सिर्फ अपने परिवार की कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन संत वो है सुहृदा सर्वदेना, संपूर्ण प्राणियों का, सिर्फ मनुष्यों का नहीं। अगर आपके पास से चींटी कीड़ी गुजरी है, मैंने एक संत को देखा मच्छर काट रहा था उसको उन्होंने मार दिया, लेकिन बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं प्रभु इसको सदगति प्रदान करना। मर गया तो क्या हुआ, ठीक है गलत हुआ कि वो मर गया, काट रहा था ठीक नहीं है और मार दिया उसको, लेकिन हृदय से भावना यह है कि हे नाथ बस इसका कल्याण करना। ऐसी भावना, ऐसी भावना, सबके कल्याण की भावना आप करो, सबके मंगल की भावना करो, दया भी करो और कल्याण की भावना भी करो। सुकृत आप ये चाहो भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ इसका भी भला हो। तो कहा कि ये संत का लक्षण है। और अजात शत्रुवा, वो कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाता। ऐसा नहीं है कि उसका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई भी दुश्मन बन सकता है किसी का, लेकिन वो किसी को दुश्मन नहीं बनाता। हमारे यहाँ दो उदाहरण है अजात शत्रु के, एक भगवान राम और दूसरे युधिष्ठिर। भगवान राम को शास्त्रों ने अजात शत्रु माना है, तो लोगों ने कहा कि राम तो अजात शत्रु कैसे हो सकते हैं, रावण उनका शत्रु था और रावण को उन्होंने अपना दुश्मन माना और रावण को उन्होंने दुश्मन मान करके उसको मारा भी, समाप्त भी किया। तो कहा नहीं नहीं ये सच नहीं है, रावण को राम ने दुश्मन कभी नहीं माना। अगर रावण को दुश्मन मानते तो फिर उसका कल्याण नहीं करते, पहली बात। मारने के बाद में भी तो उसका उद्धार हुआ, मारने के बाद में भी तो उसका कल्याण हुआ। और दूसरी बात यह है कि मारने से पहले कितनी बार उसको समझाने की कोशिश किया कि भाई तुम युद्ध मत करो, सीता जी को वापस कर दो, हम तुमको मारना नहीं चाहते, तुम्हारे साथ में लड़ाई नहीं चाहते। भगवान मूलतः किसी के साथ में युद्ध चाहते ही नहीं थे भगवान श्री राम, इसलिए उनको अजात शत्रु माना। और आपने कथा सुनी होगी कि मारने के बाद भी जब गिर गया है रावण तो लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने उसके पास उपदेश लेने के लिए भेजा है कि जाओ, वो बड़ा ज्ञानी है, महापंडित है और उसके ज्ञान का सम्मान किया है भगवान, कि जाओ उससे शिक्षा लेकर के आओ। अगर वो शत्रु मानते तो आप अपने शत्रु के पास में किसी को भेज सकते हैं कि जाओ उनसे ज्ञान सीख करके आओ। उनके मन में वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं थी, धर्म युद्ध था, धर्म कहता था कि हमारी पत्नी को उन्होंने रखा है तो उनके साथ में युद्ध करना चाहिए, तो धर्म की परिभाषा को वहां जीवंत किया है उन्होंने अपने हृदय में कोई भाव उनके साथ में। देखिए कितनी विचित्र बात है कि दूसरे को मार भी रहे, दूसरे के साथ लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन मन में वो शत्रुता का कोई भाव नहीं है, बैर का कोई भाव नहीं है, इसलिए मारने के बाद में भी वो अजात शत्रु कहलाए। और हम, हो सकता है कि हम युद्ध न करें, हो सकता है कि हम लड़ाई न करें, हो सकता है कि हम किसी को गाली न दें, लेकिन मन से हम इतनी गालियां दे लेते हैं, मन से हम इतनी दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, मन से इतना शत्रुता पैदा कर लेते हैं कि शास्त्र की दृष्टि में, अध्यात्म की दृष्टि में हम अजात शत्रु नहीं रहते। हमारे मन के अंदर में जरा अपने मन से पूछो कि तुम्हारे कितने शत्रु हैं, कितने दुश्मन हैं। ठीक है कि हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम किसी को अपना दुश्मन बना सके, हम किसी से लड़ाई कर सके, लेकिन मन के अंदर में तो दुनिया भर के दुश्मन हमने पैदा कर लिए। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो इतने सामर्थ्यवान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, और उनका कोई अपमान करके चला जाता है तो वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि मजबूरी है, बोलें कैसे। दूसरा, सामने वाला ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन मन के अंदर में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान क्या करें, आज हमारे पास ताकत नहीं है, नहीं तो इसको मैं बताता कि ये कैसा अच्छी तरीके से परिणाम देता। भगवान के सामने पूजा करते हुए उनके अपने कल्याण की बात नहीं आती उनके मन में, भगवान के साथ आराधना करते हुए मेरा उद्धार हो, सबका कल्याण हो, ये बात नहीं आती कि उसका बुरा हो, हे प्रभु अगर मैंने कुछ भी थोड़ा अच्छा किया हो तो वो सुखी न रहे, ये बुरी बुरी बातें दिमाग में आती, ये शत्रुता का भाव। तो हमारे मन के अंदर में किसी के प्रति भी अकल्याण की भावना न हो, सबके प्रति कल्याण की भावना हो, इसका नाम साधु है। तितिक्ष अजात शत्रु, और शांत होते हैं महात्मा,
शांत का मतलब है कि क्रियाओं से शांत हो, ऐसा नहीं। भागवत में ही जहां 24 गुरुओं का वर्णन आता है वहां लक्षण किया है कि मैंने समुद्र से एक शिक्षा ग्रहण की। तो कहा समुद्र से आपने क्या सीखा, तो उन्होंने कहा कि समुद्र से सीखा कि समुद्र बाहर बाहर चंचल होता है और अंदर जैसे ही आप जाओगे तो शांत होता है। समुद्र को देखो, किनारे लहरें कितनी चंचल है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे शांत होगा। ऐसे महात्मा होते हैं, ऐसे संत होते हैं, और संत होने चाहिए। उन्होंने दत्तात्रेय ने कहा कि ऐसा हमको बनना चाहिए कि क्रियाओं में हम मुस्कुराते हुए मालूम पड़े, क्रियाओं में हम प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, बोझ मालूम न पड़े, गंभीर होकर के न बैठे, परेशान न रहे। संत का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल गंभीर हो जाए, चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह हम गए कहीं कथा करने के लिए, तो हमसे कहा कि आप जाओ प्रवचन करो, तो हमने कहा ठीक है पहुंचेंगे। और उन्होंने कहा कि वहां का एक नियम है, हमने कहा क्या, तो कहा कि आप जाना और जाकर के बस बैठ जाना, वहां गद्दी पड़ी रहती है, ऐसे व्यासपीठ बनी हुई है, और वहां कोई कहता नहीं कि आप बैठो, वहां व्यासपीठ पहले से बना के रखी हुई है, जिसको बोलना आता है वो अपने आप जाके बैठ जाता है, जिसको प्रवचन करना है वो अपने आप, जैसे भगवान सुखदेव वहां गए, परीक्षित वहां बैठे थे, तो वहां व्यासपीठ थी, उसमें जाके बैठ गए, तो लोगों को पता चला कि हाँ आप ये कथा कहने वाले। हमने कहा अच्छा ऐसा करना, बोले मैं छोटा ही था उस समय, बहुत पहले की बात है। तो और उसके बाद ये था कि कोई बोलेगा नहीं वहां आपसे कि आप बोलो, वो कीर्तन हो रहा होगा, वो चुप हो जाए तो आप शुरू कर देना। उन्होंने कहा अच्छा ये बड़ा नाटक। तो मैं गया, ये तो मुझे पहले नहीं बताया कि वो जैसी चुप हो वैसी आप बोलना शुरू कर देना। मैं गया तो कीर्तन चल रहा था, मैं जाके चुपचाप बैठ गया। अब जैसे ही मैं बैठा उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया और सब ऐसे गंभीर एकदम, इतनी शांति कि बस। और मैं छोटा तो था ही, पहले तो बैठने में ही हमको संकोच लग रहा था कि अपने आप कैसे बैठ जाऊं, कोई कुछ कह न दे। लेकिन जब देखा कि कोई बोल ही नहीं रहा चुपचाप, तो मैंने कहा करना क्या है, कोई कहे तो सही कि आप प्रवचन करो, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा, सब एकदम मुर्दानगी छाई हुई है बिल्कुल। हा? और कथा सुनने के लिए बैठे, तब किसी ने कहा कि आप शुरू कीजिए। मुझे अजीब लगा, तो मैंने यहीं से शुरू किया कि आप ऐसे क्यों बैठे, हम तो डर गए। इस तरीके से बैठने का कोई अर्थ नहीं, आपके अंदर में प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवत आप भजन कर रहे हो, इतना सुंदर भजन करने के बाद और आपने वो मजीरा और ढोल सब नीचे रखा और आप इतने शांत हो गए। तो शांतता का मतलब क्या है, शांतता का मतलब है कि मन के अंदर में जो विचार हैं वो जो आपके चले जा रहे हैं इधर उधर, दुनिया भर की बातें अंदर में भरी पड़ी हैं, वो शांत हो जाना। शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें भी शांत हो गई, कि हाथ भी शांत हो गए, कि शरीर भी शांत हो गया। शरीर में चांचल्य नहीं होना चाहिए, ये भी है सच है, लेकिन प्रसन्नता का भाव तो हो ही सकता है, आनंद का भाव तो हो ही सकता है। जैसे आप सो रहे हो तो सोते समय पर भी आपका चेहरा शांत होता है और मुर्दे का भी चेहरा शांत होता है, दोनों में फर्क है कि नहीं। एक में चैतन्यता प्रतीत हो रही है, ये बात समझना, एक में चैतन्यता, सोते हुए आदमी को आप मुर्दा नहीं कह सकते क्योंकि वहां एक चैतन्यता प्रतीत होती, चेहरे में एक तेज मालूम पड़ता है, मरने के बाद में वो शांत रहता है लेकिन वो तेज खत्म हो चुका होता है, चला गया वो। ऐसे ही एक दुखी आदमी भी शांत है और एक सुखी आदमी भी शांत है, भक्त भी साधक भी शांत है, लेकिन चेहरे से पता चल जाएगा कि कौन साधक है और कौन कैसा है। तो चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। साधक का मतलब है कि शांत ऐसा हो कि वो शांति दूसरे को महसूस हो, वो आनंद दूसरे को महसूस हो, वो प्रसन्नता दूसरों को मालूम पड़े। हम तो हमेशा कहते हैं कि आपका चेहरा देख करके दूसरों को लगना चाहिए कि भाई आपको ऐसी कौन सी चीज मिल गई है। जैसे सूरदास जी ने कहीं लिखा है कि एक गोपी को पता चल गया कि भगवान को कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि दूसरी गोपियों ने घेर लिया उसको और कहा कि तुमको कौन सी चीज मिल गई कि बड़ी प्रसन्न हो, बड़ी खुश हो, कौन सी चीज तुमने पा लिया है कि आज तुम्हारे चेहरे से खुशी फूट पड़ रही है। वो और कुछ बोल नहीं रही, बड़ी मस्त है, आनंदित है, वो आनंद फूट फूट के निकल रहा है। तो गोपियां पूछ रही हैं कि कौन सी चीज तुमने पा लिया है, क्या चीज तुमको मिल गई है, तो कहती है कि आज भगवान को प्राप्त करने का हमको तरीका मिल गया है, हमें आज मालूम पड़ गया है कि उन कृष्ण को अपने घर में हम कैसे बुला सकते हैं, ये मालूम पड़ गया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए आनंदित हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि सत्संग में आने के बाद आपके चेहरे को देख करके अगर दूसरे लोग ये कहें कि कौन सी चीज तुम्हें मिल गई है, कहाँ तुम जाते हो कि इतना सुंदर तुम्हारा चेहरा हुआ, कहाँ तुम जाते हो कि तुम्हारे चेहरे पर ये प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए, आखिर कहाँ क्या हुआ है तुमको, तब तो आनंद है। तो शांत मन से हम शांत हों
और शांत का एक अर्थ बताएं आपको, शांत का अर्थ है कि जहां आप परमात्मा का चिंतन करने लगते हो तो वो शांत ही है। परमात्मा के चिंतन करने में भी मन हरकत करता हो भले ही, भगवान का कीर्तन करते समय भी तालियां बजाते हो भले ही, भगवान का कीर्तन करते समय नाच रही है मीरा, नृत्य कर रही है, तो ये नृत्य करना शांत तो नहीं है, शांतता का लक्षण नहीं है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में शांति ही है क्योंकि वो परमात्मा के समीप है, भगवान के समीप है। तो परमात्मा निमित्त जो कुछ भी आपका आचरण हो रहा है वो शांतता के अंतर्गत आ जाएगा। तो भगवान का अगर आप मन से चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, वो शांतता का लक्षण है। और शांत का मतलब है कि जहां सब कुछ खत्म हो जाए, दुनिया न रहे, संसार जहां न रहे, संसार ही विक्षेप पैदा करता है, संसार ही चांचल्य पैदा करता है, संसार खत्म तो सब कुछ खत्म समझना चाहिए। शांत साधव, और साधु कैसा हो, महात्मा कैसा हो, संत कैसा होता है, हमने कैसा देखा है, तो कहा वो साधु होता है। साधु का मतलब है कपट रहित सज्जन, साधु का मतलब है कपट रहित, जैसा अंदर है वैसा बाहर, उसने अपने आप को बनाया नहीं है, उसने अपने आप को आडंबर में नहीं ढाला है। किसी जगह मैं सुन रहा था, बहुत पुरानी बात है, कि भगवान श्री राम से भरत जी मिलने के लिए गए, भरत जी अयोध्या से सबके साथ में गए, और जब पहली बार मिले चित्रकूट में, भरत मिला पहली बार जब मिले, तो जैसे भगवान श्री राम ने देखा भरत जी को तो उठ गए भरत राम जी भी, और दोनों जाकर के आपस में गले मिल गए। पहले तो प्रणाम किया है भरत जी ने, पाए नाथ कहे पाए गुसाई, प्रणाम किया है, लेकिन बाद में भगवान ने उनको गले लगा लिया। तो एक कथावाचक से मैंने सुना कि जब गले लगाया तो पीताम्बर गले में पड़ा था, पट बोलते हैं उसको, पट, तो वो पड़ा हुआ था, जब गले मिलने लगे तो वो बीच में आने लगा, तो वो भी अखरने लगा कि इतनी दूरी भी अब सहन नहीं होती, कितनी प्यारी बात, इतनी दूरी भी अब सहन नहीं होती, कि ये इतनी दूर से आए हम अयोध्या से मिलने के लिए, और ये पीताम्बर जो है मिलने में बाधा बन रहा है, इतना भी दूर खटक रहा है। तो उन्होंने वो पीताम्बर निकाल करके फेंक दिया, भगवान श्री राम ने भी और भरत जी ने भी, दोनों ने पीताम्बर निकाल कर फेंक दिया। फिर मिले तो उन सज्जन ने, कथाकार ने कहा कि देखो एक ये भाई है कि जब मिलते हैं तो पट भी बीच में नहीं रखते, और एक आजकल के भाई है कि मिलते हैं तो कपट बीच में रखते हैं, पट ही नहीं कहा और जोड़ दिया। ऐसे ही हम ऐसे ही है कि हम किसी से मिलते हैं तो हम पट नहीं, ये वस्त्र तो है ही सही, बीच में बाधा, ये वस्त्र तो है ही रुकावट, लेकिन हम कपट रख करके मिलते हैं, हम मन में भी एक पर्दा डाल देते हैं, हम मन में भी एक आवरण रख देते हैं, हम गुप्त होकर के मिलते हैं, हम छिप करके मिलते हैं, हम पता नहीं क्या क्या विचित्र बात है। तो साधु का मतलब है कि जो निर्मल हो गया, कपट रहित हो गया, उसके मन में कभी ये आया ही नहीं कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करूं। ये बात आप अच्छी तरह से समझना, बिल्कुल अच्छी तरह से, कि जब तुम भजन करो तो तुम्हारे मन में एक बार भी ये नहीं आना चाहिए कि कोई देख रहा है कि नहीं, थोड़ा देख ले कि हम देखो हम भजन करने वाले हैं, लोग हमारी प्रशंसा करें। ये बात तुम्हारे मन में अगर आ गई तो भगवान के सामने दोबारा रो कि हे प्रभु ये क्या हो गया, हमारे मन में दिखाने की भावना क्यों आई, अंदर से तो भजन होता नहीं है, बाहर से हम दिखाने की चेष्टा करते हैं, एक दूसरा और अवगुण हम ओढ़ लेते हैं, एक दूसरा और दोष हमारे ऊपर। बताइए हम दोषों को खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हम दोषों को और बढ़ावा देने वाला काम करते हैं, जो चीज हमारे में नहीं है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और उससे जो जनित सम्मान है वो हम पाने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमारी प्रशंसा करें। पहले हम सज्जन तो बने, पहले हम साधु तो बने, पहले हम निर्मल तो बने। और भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीजें एक ही हैं, निर्मलता, कपट रहितता और मोहे कपट छल छिद्र, छल 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 कपट दोनों एक ही हैं, लेकिन इतना नफरत करते हैं कि उनको कई तरीके से कहा। भगवान कपट को इतना नापसंद करते हैं, किसी कवि ने लिखा है बहुत बढ़िया, वेशधारी हरि के उर साले, सालना जानते हैं आप, जैसे गोली लग जाती है जैसे मान लीजिए, और उस गोली को निकालने के लिए किसी चाकू से लेकर के, और जब वो निकालते हैं घाव के अंदर में, आप इस तरीके से उंगली डाल के अगर उसको परेशान करना चाहें तो कितनी पीड़ा होगी, ये सालना होता है। किसी घाव के अंदर आप उंगली डाल करके उसको अगर परेशान करें तो ये सालना है, तो उस महात्मा ने लिखा वेशधारी हरि के उरसाले, अगर आप मात्र वेश से, अगर आप मात्र क्रियाओं से, अगर आप मात्र आडंबर से और परमात्मा के भक्त बने हुए हैं तो कहते हैं कि आपको भगवान पसंद नहीं करते, बट उल्टा आप भगवान के हृदय में सालते हैं कि अच्छा ये भी है परेशान करने के लिए। भगवान को शायद अगर कोई गालियां दे, दुरुक्तियां कहे तो भगवान को कष्ट नहीं होता, भगवान को परेशानी नहीं होती। भगवान के हृदय में वे सालते हैं जो उनके नाम पर झूठा आडंबर रचते हैं, भगवान उन्हें पसंद नहीं करते। तो मोह कपट छल छिद्र नवाब, सीधी सी बात कही कि मुझे पसंद नहीं। अगर आप मुझे पसंद करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको चाहूं और आपको पसंद करूं, तो मैं आपको अपनी पसंद बता देता हूं। आपको भोजन कौन सा पसंद है आप पूछते हैं, संतों से पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो भगवान ने कहा हम अपने मन से ही बता देते हैं कि हमें कैसे लोग पसंद है। अगर आप परमात्मा का प्रिय बनना चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ओर से ही कह दे रहा हूं, अपनी तरफ से ही कह दे रहा हूं कि हमारा प्रिय वो है जिसके अंदर में छल नहीं है, जिसके अंदर में कपट नहीं, जिसके अंदर में आडंबर नहीं। अगर आप आपके अंदर में ये गुण है तो अपने आप प्रिय है। साधव साधु भूषण, और जो दूसरे सज्जन है, संत का एक और लक्षण किया, जो दूसरे महात्मा है, दूसरे सज्जन है, उनका वो सम्मान करते हैं, उनको वो अपना आभूषण बना लेते हैं। यहां तो ऐसा होता है कि एक महात्मा दूसरे महात्मा की इज्जत नहीं करे, एक साधक दूसरे साधक की प्रशंसा न करे, लेकिन भगवान कपिल कहते हैं कि संत वो है जो दूसरों की बड़ाई करे, दूसरे सज्जनों का सम्मान करे, दूसरों को आदर दे, दूसरों का सत्कार करे, वो महात्मा है। साधव साधु भूषण, साधु भूषण माने अच्छे लोगों का साथ करता है, अच्छे लोगों के संग रहता है, वो अच्छे लोगों की संगति करके उनको आभूषण बनाता है, उनको धारण करता है, मतलब उनकी बातों को धारण करता है, उनका अनुपालन करता है, वो महात्मा है, वो साधक है। इतने सारे लक्षण बताए और अंत में सबसे बढ़िया लक्षण बताया, मई अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। महात्मा कैसे हैं? तो कहा सबसे बड़ा लक्षण उनका ये होता है कि मेरे अनन्य भक्त होते हैं। अगर ऊपर जितने भी गुण कहे गए हैं उनमें से एक भी ना हो, तितिक्षा ना हो आपके अंदर, करुणा ना हो, सबका कल्याण की भावना ना हो, अजात शत्रुता ना हो, शांति ना हो, साधु ना हो, कपट रहितता ना हो और दूसरों को सम्मान करने वाली बात ना हो, चलेगा। और अगर ये चीज नहीं है और वे सब हैं तो नहीं चलेगा। एक संत को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कोई स्त्री हो, पत्नी, पतिव्रता स्त्री हो, और उसको सारे श्रृंगार कर दिए जाएं, सारे 16 श्रृंगार मान्यता है हमारे यहां शास्त्रों में, 16 श्रृंगारों से सुसज्जित कर दिया जाए लेकिन उसका पति ना हो तो कैसी लगेगी। और दूसरी तरफ भले ही श्रृंगार के लिए उसके पास बहुत कुछ न हो, साधन न हो, लेकिन पति उसके साथ हो तो उन दोनों में से भाग्यशाली कौन है? किसे आप पत्नी कहेंगे? स्वाभाविक है कि जिसके साथ में पति है। ठीक इसी प्रकार से यहां समझना चाहिए कि सारे गुण हो लेकिन भगवान के प्रति अनन्य भक्ति न हो तो कहा उन गुणों से कोई लेने देना नहीं, उन गुणों का कोई अर्थ नहीं। आप कितने बड़े भी तितिक्षु बने रहो, आप कितनी भी तितिक्षा करते रहो, लोग तितिक्षा करते हैं कि धूप में बैठ के साधना करते हैं, कि अग्नि तपते हैं, कि ठंडी आ जाए तो पानी में खड़े होकर इसके जप करते हैं, ये कितनी भी तितिक्षाएं करते रहो। भागवतकार कहते हैं कि तितिक्षा तुम्हारे अंदर में अगर तुम करोगे, तब करोगे तो वो तब तुम्हारे अभिमान को ही पैदा करेगा, अभिमान को ही पुष्ट करेगा। पहले तुम बढ़िया थे लेकिन बाद में कहोगे जानते हो मैं कौन हूं। पुराणों में कथा आती है कि एक भक्त था और वो भगवान का तप करता था, भजन करता था, और आपने सुना होगा ये कहानी, बड़ी प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति उसमें थी कि अपने कपड़े सुखाने के लिए वो ऐसे आकाश में फेंक देता था और सूख जाए कपड़े तो नीचे आ जाए, और कपड़े को सुखाने के लिए वो रस्सी पर डालने की उसे जरूरत ही ना पड़े, इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य उसमें। एक दिन वो तप कर रहा था, बैठ करके भजन कर रहा था पेड़ के नीचे, तो ऊपर पक्षी ने बीट कर दिया तो क्रोध आ गया। और बिल्कुल संभावना है कि अगर आपके अंदर में परमात्मा के प्रति ये अनन्य भक्ति नहीं है तो तितिक्षा से, तपस्या से तुम्हारे अंदर में अभिमान पैदा होगा ही, क्रोध पैदा होगा ही, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो आंख उठा के देखा पक्षी को, जल के राख हो गया, खत्म। अब इन्होंने सोचा मैं तो बड़ा सिद्ध हो गया हूं कि जिसको देखूंगा उसको राख कर दूंगा। गए भिक्षा लेने के लिए, तो एक घर में पहुंचे और आवाज लगाई कि भिक्षा दो, तो वहां से एक महिला निकली उसने कहा कि महात्मा जी आप थोड़ा 2 मिनट ठहरिए, मैं पति की सेवा कर रही हूं, अभी आपको भिक्षा देती हूं। तो ये क्रोधित हो गए कि तुम हमको जानती नहीं, मेरा अपमान कर दिया, तुम हमको जानती हो कि मैं कौन हूं? बोले हाँ मैं आपको जानती हूं, लेकिन मैं वो पक्षी नहीं हूं जो आपके देखने से चल गई थी। वो आदमी परेशान कि इसको कैसे पता चला, इनको कैसे मालूम पड़ा कि मेरे देखने से वो पक्षी जल गया था, मैंने तो कहा नहीं अभी, तो कहा आपको पता कैसे चला? तो कहा उसके लिए 2 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं जरा सेवा करके आऊं। और सेवा करके आई तो कहा कि देखो हमें फुर्सत नहीं है, अभी ज्यादा काम है, तुम आगे ही चले जाओ, एक ब्राह्मण देवता है, एक लड़का है, आदमी है, उसके पास चले जाओ और वो तुमको बताएगा। वहां भेजा तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, वहां पर भी यही हुआ। उसने कहा बोले मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, थोड़ा रुको। कहा कि तुमको पता नहीं? बोले हमको मालूम है, लेकिन वो पक्षी हम नहीं है। अब ये और चकित कि उसको भी पता है, इनको भी मालूम है। फिर वो तुलाधारी वैश्य था, वहां गए, उसने भी यही कहा कि हमको नहीं पता है, हम वो पक्षी नहीं है कि जिसको देखने से, तुम्हारे देखने से मर गया था, समाप्त हो गया था। अंत में कसाई सदन के पास में पहुंचे और उसने बताया, समाधान किया कि तुम ये अज्ञान से, हमारे जो चित्त हैं चारों के जहां जहां तुम गए, ये जो चित्त हैं ये परमात्मा के चिंतन करते करते एक रूपता को प्राप्त हो गए, इसके लिए शेष कहां रहा? जिसने ब्रह्म को देख लिया, परमात्मा का दर्शन कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, उसको देखने के लिए फिर और कहीं कुछ कमी नहीं रही। वो सर्वत्र संपूर्ण नेत्र उसके व्यापक हो गए, श्रोत्र उसके व्यापक हो गए, वो हर जगह की चीज को अपने आप में अनुभव कर सकता है, देख सकता है अगर चाहे तो। ये सिद्धियां कोई कमाल की नहीं, उनमें तुम क्यों उलझे हुए हो? तो हो सकता है कि परमात्मा के चिंतन के अभाव में, परमात्मा के प्रति समर्पण के अभाव में ये जो चीजें हैं ये हमारे अंदर में गुणों की जगह दुर्गुण पैदा कर दे, ये पक्की बात है। तो कहा कि मैं अनन्या भावेन, ये सबसे बड़ा लक्षण है कि परमात्मा के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए। अनन्यता क्या है? कि जहां दूसरा कोई आश्रय न हो। अनन्यता क्या है? कि जहां दूसरी तरफ कोई मन के अंदर में ये विश्वास न हो कि अगर ये काम नहीं होता है तो चलो वो लोग तो है, सब भरोसा हो जाएगा। आपने सुना ही है कि द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, तो उनके चीरहरण होते समय उनके मन में सबसे पहला भाव क्या आया? कि हमारे पांडव पति 5 बलवान सामर्थ्यवान वो बैठे हुए हैं, चिंता करने की क्या बात है? उनके मन में कृष्ण का ख्याल नहीं है, उनके मन में परमात्मा का बोध नहीं है कि भगवान है, हम क्यों चिंता करें? उनके मन में है कि ये लोग हैं, काहे के लिए चिंता करो। लेकिन जब उनको देखा कि सिर झुकाए बैठे, तो कहते मन में, देखिए मन भी कितना विचित्र है, पहले हम संसार को ही अपना आश्रय बनाते हैं और मानते हैं। तो द्रौपदी का मन कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो भीष्म पितामह बैठे, इतने बुजुर्ग लोग, इनके सामने ये अधर्म नहीं हो सकता। और जब देखा कि उन्होंने भी अपनी नेत्र नीचे कर लिए, और देखिए मन की विचित्रता कि उन्होंने अपने दांतों के बीच में उस साड़ी को पकड़ रखा है, और मन में क्या आया? बोले अभी तो मैं पकड़े हूं, इतनी जल्दी थोड़ी ये खींच लेगा। यानी दुशासन के हाथों से ज्यादा अपने दांतों में ताकत समझ रही है, मन ही है जो ऐसा सोच सकता है, और कोई नहीं सोच सकता, अपने दांतों को इतना ताकतवर समझने लगी। लेकिन द्रौपदी थी, उनको बोध हो गया, समझ में आ गया कि दांत कितनी देर रोकेंगे, तो बस निश्चिंत हो गए, मुंह से पुकार, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, प्रकट हो जाइए, आ जाइए। और देखिए कि परमात्मा आ गया। अच्छा, परमात्मा को आना नहीं था, वही था वो, तो परमात्मा को प्रकट होने की जरूरत नहीं थी, वही थे, लेकिन फिर भी नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही रोक रखा था। मैंने कहानी सुनी है कि एक बार भगवान भोजन करने बैठे खाने के लिए, और तभी पता नहीं क्या हुआ, रुक्मिणी जी भोजन की थाली लेकर के आई और उसी समय उठ करके भागे। तो भगवान ने कहा कि कहां, रुक्मिणी जी ने कहा कि कहां जाते हो, भोजन की थाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आप कहां जा रहे हो? तो बोलने का भी समय नहीं था, वो चले गए। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि खाते हुए छोड़ करके, तो पहली बार देखा है ऐसे। लेकिन देखते क्या है कि तुरंत वापस भी आ रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि आप गए ही क्यों थे, क्या बात थी? बोले बात यह थी कि एक भक्त था, लोग उसको पत्थर मार रहे थे, तो मैं बचाने के लिए दौड़ा। तो कहा जब बचाने के लिए दौड़े तो फिर वापस क्यों आ गए? तो कहा नहीं, वो खुद ही जवाब देने लगा था, अब हमारी जरूरत नहीं थी, अब हमारी आवश्यकता नहीं थी। तो जब तुम खुद ही रुकावट बनने लगते हो परमात्मा की कृपा में, भगवान तो कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है, परमात्मा की कृपा में भेद नहीं है। मैं कहीं सुन रहा था कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, परमात्मा की कृपा के बिना वो विवेक नहीं मिलता, परमात्मा की कृपा के बिना वो सत्संग नहीं मिलता आदि आदि। तो कहा परमात्मा तो सबके ऊपर समान कृपा करता है। बोले करता तो समान है, लेकिन लेते सब समान नहीं है ना, बारिश हो रही है, लेकिन जिन्होंने अपने घड़े उल्टे कर दिए हैं तो इंद्र क्या करें बेचारे। अब इंद्र आकर के उनका घड़ा सीधा करके तो भर नहीं सकते, तो हम लोग परमात्मा की तरफ से उल्टे होकर के संसार की तरफ अपना मुंह किए हुए हैं, तो परमात्मा की कृपा बरसे भी कहां। तो हमारे आग्रह, हमारे दुराग्रह, हमारे चिंतन, हमारी अभिलाषाएं, हमारी कामनाएं, हमारी वृत्तियां ही परमात्मा की कृपा में बाधक बन जाती हैं, तो हमारी अनन्यता पैदा नहीं होती, परमात्मा के प्रति निष्ठा नहीं होती। एक जगह मैं बोल रहा था कि भगवान से ज्यादा बैंक बैलेंस पर हमको भरोसा होता है, परमात्मा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों पर भरोसा होता है, भगवान से ज्यादा हमें अपने शरीर के इन हाथों पर। लोग कहते हैं ये हाथ है ना, चिंता क्यों करते हो, उनको अपने हाथों पर, अपने पौरुष पर ज्यादा विश्वास है, परमात्मा की कृपा पर हमें भरोसा होता कहां है। तो आप परमात्मा के प्रति अनन्य भाव पैदा तो कीजिए। अनन्यता क्या है हम कल चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक छोटा सा भजन है और वो प्रेम से गा लीजिए, प्रेम से गाइए।
ओ सांवरे कन्हैया दिलदार बन के आ जाओ, सांवरे कन्हैया, ओ सांवरे कन्हैया दिलदार बन के आ जाओ, सांवरे गोलोक का बसैया अवतार बन के आ जाओ, गोलोक का बसैया सांवरे कन्हैया दिलदार बन के आ जाओ, सांवरे। आशा की उलझनों में उलझा है प्यारे जीवन, आशा की उलझनों, आशा की उलझनों में उलझा है प्यारे जीवन, उलझाए प्यार जीवन, उलझन ये जिससे सुलझे वो तार बन के आ जाओ, उलझन ये जिससे ओ सांवरे कन्हैया दिलदार बन के आ जाओ, सांवरे पल पल पुकारे पागल दुनिया कहे दीवानी, पल पल पागल, पल पल पुकार पागल दुनिया कहे दीवानी, पल पल पुकार पागल दुनिया कहे दीवानी, रातों की नींद खो दूंगा प्यार बन के आ जा, रातों की नींद, रातों की नींद खो दूंगा प्यार बन के आ जा, कन्हैया दिलदार बन के आ जाओ, जिस रूप की छटा से घायल हुआ था मधुबन, जिस रूप की, जिस रूप की छटा से घायल हुआ था मधुबन, घायल हुआ था मधुबन, सांवरा सलोना फिर यार बन के आ जा, सांवरा सलोना, सांवरा सलोना फिर यार बन के आ जा, सांवरा ओ सांवरे कन्हैया दिलदार बन के आ जा, तेरे मधुर मिलन से वीणा हृदय की गूंजे, मधुर मिलन से वीणा हृदय, तेरे मधुर मिलन से वीणा हृदय की गूंजे, तेरे मधुर मिलन से वीणा हृदय की गूंजे, नूपुर रागिनी की झनकार बन के आ जा, नूपुर रागिनी रागिनी की झनकार बन के आ जाए, पूर ओ सांवरे कन्हैया दिलदार बन के आ जाए, सांवरे ओ लोक का बसैया अवतार बन के आ जा, लोक का